किंतु भक्ति पूर्वक गोपियों की जो वह सेवा है कुंजों में कृष्ण के और युगल किशोर उसको देने वाले गिरिराज हैं, उनको उसी रूप में उनका भजन करने से बड़े प्रसन्न होकर के दे देते हैं। इसे गिरिराज के गोवर्धन का यह वैशिष्ट है। दूसरी बात, अभी हम लोग यज्ञ पत्नियों के संबंध में, द्विज पत्नियों के संबंध में सुना। इसके पहले वेणुगीत हुआ। वेणुगीत का तात्पर्य क्या है? गोपियां तन्मय होकर के जहां दो चार मिलती हैं अपने घरों में कृष्ण की लीला कथाओं का चिंतन करती हैं और गान करती हैं। हम लोग रसोई बनाते समय विशेष करके महिलाएं और सब कामों से कुछ निवृत्त होने के बाद में 10-5 बैठ जाती हैं और संसार की बातें करती हैं। पुरुषों को तो रसोई सही बनाने की कोई बात ही नहीं है। आजकल भोट का युग है, सभी लोग इसी में व्यस्त हैं। उनको फुर्सत नहीं और किसी काम से। मैं इस प्रसंग में निवेदन करूंगा, आप लोगों सबसे निवेदन यही करूंगा, आजकल खूब दुख से वोट का ये जुगाड़ चढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग वोट का बाइक बाइक और अपने मताधिकार का आप लोग स्वतंत्रता से व्यवहार जरूर करना चाहिए। एक एक व्यक्ति का आज के युग में कुछ थोड़ा सा ये अधिकार है, किंतु उस अधिकार का दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग होना चाहिए। अपने विवेक से ये विचार करेंगे कि हमारी वैदिक रीतियों का कौन पालन कर रहा है या करा रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको हम भूल देंगे। वो गीता भागवत के विचारों को लेकर के चलता है, अन्यथा इसके विपरीत लोग आने से धर्म भ्रष्ट होकर के गायों का काटना, माता पिता का आदर नहीं करना, मदिरा मांस पीना पति यही रह जाएगा, उसे देश उछल न जाएगा। यद्यपि काल का प्रभाव है, किंतु जो भागवत श्रवण करने वाले हैं भगवान भक्ति का अनुशीलन करते हैं, विचार करके देखेंगे वास्तविक में जिन लोगों में कुछ धर्म की भू हो, ग्रंथ हो, और हमारी प्राचीन संस्कृति की जो धरोहर है भारत की, वो भगवत भक्ति है, तत्व ज्ञान है, इसकी रक्षा के लिए जो भी कुछ थोड़ा सा भी कोई कार्य करता है, राजनीति वाले नहीं करते, ये बात ठीक है, किंतु थोड़ी भी दिन में ऐसी भावना हो उनको तो आप बढ़ दो नष्ट मत करें, तभी कुछ हो सकता है, किसी हो। गोपियां क्या करती हैं? इन पचनों से दूर रहता भगवत भक्त लोग, इन पचनों से दूर रहता जहां मिलित होते हैं गोपियों जैसे। परोक्ष में कृष्ण नहीं है, कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं, अब घरों में बैठ करके दल का दल स्वजातीय दल कृष्ण के लिए लीला कथाओं का कृष्ण का सुंदर जो भी इन्होंने वर्णन किया होगा, बरहा पीड़म नटवर वसु कर्ण योग कर्णकार विस्तृत भाषा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंधरम वैद अदर्श दया पूरे अनुरूप बिंदई वृंदारण्यम कबद रमणम प्रापिशत गीत करते। गोपियां कार्य भाव नेत्र से देख रही हैं, तो अपने अपने घरों में बैठे और भाव मात्र से देख रही हैं कृष्ण का कैसा अद्भुत मनोहर रूप है। श्याम अंगों पर ये पीले रंग की चादर अत्यंत बिजली जैसा, जैसे मेघ में बिजली चमकती है ऐसे मानव चमकती। उम्र कैसी है? अभी किशोर उम्र में भी प्रवेश कर रहे हैं। कभी एक कानों पर कनेर का फूल मदमग्न होकर और कभी दूसरे कान पर नाना प्रकार के फूलों और पत्तियों से अपना श्रृंगार किए हुए, जैसे एक नट एक राक्षसथली में जैसे पहले नट जाता है, नट माने वो अभिनय का प्रारंभ करने वाला, जैसे राधा जी और कृष्ण को बना करके उनको भेजते हैं, ऐसा सुंदर नृत्य करते हैं कि सबका मनमोहन कर देते हैं। ऐसे ही नटवर के रूप में वहां मनोमय लाखों गायें उनके आक्षेप से चल रही, लाखों सखा लोगों के पीछे उनका गुण सृष्टि करते हुए चल रहे कृष्ण के चरणों के जो चिन्ह में पृथ्वी पर लग रहे बड़े सुशोभित पृथ्वी अपने को धन्य मान रही है। उसी समय उन्होंने बंसी बजाई, गोपियां ये देख रही चक अचक समस्त प्राणियों का मन मोहन कर रहे हैं। कहीं कदम पर वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी की तान से चक अचक सब लोग उनको मुग्ध कर रहे हैं। मंद मंद मुस्कान उनके मुखों से निकल रही है। गोपियां कहती हैं हमारा बहुत धन्य भाग है, भाग होता है जो ऐसे व्यक्ति हम लोग छवि निहारती रहते हैं जिसमें से एक वन से दूसरे वनों को जा रहे हैं। लाखों गायों और सखाओं के साथ में बलदेव भैया जी हैं, दाऊद जी हैं और एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। अधर्म पर मुरली की राजी है और मंद मंद मुस्कान उनके होठों से निकल रहा है। ऐसे कृष्ण का रूप यदि हम देखें हमारा जीवन धन्य हो सकती हूँ। जिन लोगों ने कृष्ण का ऐसा रूप नहीं देखा उनके आंखों को का कोई भी फल नहीं है, वो आंखों पर वज्र गिर जाता तो ज्यादा तो अच्छा था। कैसे कृष्ण इनके साथ में सह क्या बल सह बल जदराम कृष्ण न परम विदाम सख प्रसन्न अनुवेश वक्रम प्रजेश सुतोयो अनुवेदम वक्रम प्रजेश सुनयो अनुवेदम दैवानिधि समुरा। यहाँ पर दाऊ जी का प्रसंग गोपियों को अभी नहीं है, गोपियां नहीं जाती हैं जाऊ जी को। बलदेव जी भी बड़े चतुर हैं, यहाँ पर बड़ी चतुराई से इस श्लोक में गोपियां वर्णन कर रही हैं। अरे जो श्याम और गौ वर्णन कर जो जा रहे हैं उनके मुख में बेणु है किंतु बलदेव के मुख में तो बेणु नहीं होगी, सिंह इत्यादि रखते हैं, बेणु भी बजा सकते हैं किंतु वो अधिकतर सिंह बजाते हैं और कृष्ण बेणु बजाते हैं। अनुबेणु युष्टम बेणु का वादन करते हुए जो जा रहे हैं उनका मुख यदि दर्शन किया जाए जिनके हाथों से मुखों से मंद मंद मुस्कान खिलती रहती है हमारा जीवन। विशेषता कृष्ण जब जा रहे हैं तो बलदेव जी इन चीजों को समझते हैं, जो गोपियों के साथ में इनको मिलने में संकोच हो जाता इसलिए वो आगे आगे चले जाते हैं। कृष्ण अब अकेले रह जाते हैं सखाओं के साथ में। उस समय में कृष्ण बंसी बजा रहे हों और मंद मंद मुस्कान से गोपियों की तरफ में देख रहे हों, करुणा भरी दृष्टि से उनका दर्शन करना और भी उत्तम है। और उससे बता क्या अनुभेद उत्तम जो ब्रज के नंद बाबा और ब्रजभान महाराज हैं ये दोनों ही गोप हैं, ब्रजेश ब्रज के राजा हैं। अब यहां पर ऐसा भाव किया गया कि ब्रजेश जो ब्रजभान महाराज हैं वो नंद बाबा से कम नहीं है, उनसे पीछ पड़ते हैं। नंद बाबा को 7 लाख गाय 9 लाख और उनको है 11 लाख गाय। नंद बाबा को 1 बेटा और विश्वभान महाराज को 1 बेटा श्रीराम और 2 बेटियां राधा जी और अनंग मंदिर। और ये ऐसी सुंदरी जो नंद बाबा के बेटे को भी अपने सौंदर्य से उनका चित्त भी हरण कर लेती है, साधारण नहीं। इसलिए ब्रजेश जो है विश्वभानु महाराज वो जरा सारा इनसे भी कुछ अधिक पड़ता है। वो उनकी पुत्री जो श्रीमती राधिका जी है। ब्रजेश सुतयो सुताश्च सुतश्च सुतयो। नंद बाबा का सुत और विश्वभानु महाराज की सुता, ये जुगल जब बंसी बजाती है परस्पर और एक दूसरे का मुखारविंद देखती है, कैसे राधा जी ने कृष्ण की बंसी दे दी और अपने मुखारविंद पर रख और कृष्ण उनके छेदों पर अपने हाथ रख दिए, पर छोड़ती है और कृष्ण उसका मधुर से बाधन करते हैं, इसलिए कृष्ण के बाद में मनु अर्थात कृष्ण का बजाया हुआ जो वेणी उसको राधा जी बजा रहे हैं और उस समय में परस्पर जो देख रहे हैं उनका जो सौंदर्य माधुरी है वो सबसे बड़ी निराली है। गोपियों जिनको नहीं देखा उनका जन्म प्रथा तो कैसे देखे हमारे साथ में चलो भाई, दूर से देखेंगे निकट नहीं देंगे। क्यों? अरे ये हमारी निगोड़ी, ये मरकटी, कौन जटिलाल सुशीला सास और ननद हैं या ऐसे ही अपने सासों को देख करके कह रहे हैं, कैसे जाएंगे हम लोग? अरे धीरे धीरे बात करो नहीं तो वो सुन लेंगे, तो दूसरी सुनने वाली कहती है अरे सुन करके ये क्या कर लेगी, इसकी बेटी भी तो जा रही है, खुद भी देखने के लिए जाएगी, जब खुद ही ये जाती है तो ये क्या कर लेगी, जो कर लेगी वो देख लेंगे, हमको तो चलना है। दूसरी कहती है भाई दूर से जाकर के तो हम देख सकते हैं किंतु उनके अधरों से निकली हुई इस अमृत अधर अमृत को पान करना हम लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है, हम निकट नहीं जा सकते। अरे चलो तो निकलो देखो तो जहां रूप को देखेगी उस समय में अपने आप भारा मन खींच जाएगा, अपना मन अपने होश में नहीं रहेगा, उस समय पर्वत को खींच करके जो कुछ कराना होगा वो कर। कृष्ण की ऐसी माधुरी का वर्णन कर रही है। इसी तरह से समय तो बहुत अधिक हो गया, और भी कुछ कहना चाहता था, कल मैं सवेरे कुछ मिल बहुत देर हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोपियां वर्णन कर रही हैं। कोई गोपी कहती है अरे मर करके हिरण हो जाते तो अच्छा, वहां पर सास ससुर का और देवर का ये व्यंग नहीं सहना होता, वो तो हमें छोड़ते नहीं है। आज देखो तो कितने सौभाग्य की बात है, ये हिरण ये पशु जन्म में इनका ही जीवन धन्य है। क्यों धन्य है? अरे देखो ये कृष्ण के अत्यंत निकट होकर के और मानो मुख से मुख लगा करके उनकी प्रणय की भीख मांग रही है और उसका पति पीछे खड़ा है कृष्ण सार, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना सार बना रहा है, इसीलिए वो धब्बे लगे हुए काले काले, वो एकदम कहता है पति को स्त्री को तुमको कोई कोई चीज डर नहीं, कोई कहने वाला है तुम्हारी ननद सास जो कुछ है, मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुमको किसी प्रकार का डर नहीं, हमारे पति हमारे विरोधी हैं, सास भी विरोधी, समाज भी विरोधी, गुरुजन भी विरोधी, हम इस जन्म में तो ऐसा नहीं कर सकते, जब उनसे निकट आकर के सबके सामने खड़ी होकर के हम उसे प्रेम कर सकते, इसलिए मर कर हमें हिरण। कोई कहता है कहती है ओहो ये देवता जो विमान से चलती हैं अपने पतियों की गोद में जो सो जाती हैं, इस सदा लीला को देख करके देवता लोग दर्शन करने का अधिकारी नहीं, वो नहीं देख पाते, देखने का अधिकारी कौन है? कुछ कुछ हद तक उनकी स्त्रियां हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया, उनको भोजन खिलाया और उनको प्रेम की प्राप्ति हुई और उनके पतियों को नहीं हुई, उन्होंने वृथा अहंकार में यज्ञ करने को अपने को बड़ा भारी समझा, ब्रह्मचर्य धारण करने को अपने को बहुत भारी, कल के डर के मारे कृष्ण का दर्शन भी नहीं करने जा सकता और गोपियां डर है कुछ नहीं कर सकते, ब्राह्मण की पत्नियां यज्ञ के लिए ऐसे ही वो करें, वो देवताओं की जो पत्नियां हैं देवियां हैं विमानों में अपने पतियों के गोद में ही कृष्ण का यह रास लेकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी और उनके केस में बांधे जाने वाले जो फूल थे वो नीचे गिर गए। ओहो यदि हम इन देवताओं की पत्नियों के रूप में कभी जन्म ग्रहण करते हमारा जीवन सार्थक हो जाता। अरे इनकी तो बात छोड़ो, ये तो मनुष्य जीवन योनि में या देवता योनि में है। अरे इन बच्चों को तो देखो, इन गाय को तो भी देखो, तो कृष्ण की या अनुपम माधुरी और वेणी माधुरी का श्रवण करके एकदम खाना पीना सब भूल गए हैं। जो घास उनके मुखों में है वो मुखों में ही रह गया, न उसे निकल पाते हैं और न उसे छोड़ पाते हैं। अरे बच्चों को तो देखो, छोटे छोटे अब बच्चे मैया के स्तन में मुंह लगा रखा है, उसमें थोड़ा सा दूध उनके गले ले गया, न तो निकलते हैं न फिर रहे हैं। विवश होकर के जहां तहां काम को दोनों की भांति ऐसे किए हुए कृष्ण की माधुरी वेणु माधुरी और कृष्ण का रूप आंखों से निहार कर सजल आंखों से आंखों में आंसू आ जाते हैं और वैसे के तैसे एकदम स्तब्ध होकर के जड़ जड़ जाते हैं। ओ बच्चों का जन्म, गायों का जन्म भी बहुत सार्थक है, क्योंकि कृष्ण उनको गले से लगाते हैं, उनका ऐसे लोरी को दुलार करते हैं, गायों के पीठ को सहलाते हैं, गायों के चरणों के पीठ को भी उनको धोते हैं और पूजा करते हैं, गायों को चढ़ाते हैं। और यही जन्म अरे देखो ये बनके जो सुख पक्षी है, मयूर पक्षी, कोयले हैं, पपी हैं, ये सब पक्षी नहीं है, ये तो सिद्ध महात्मा लोग हैं। ये लोग वेद की भक्ति रूपी डाल को पकड़ता था, उस भक्ति के डाल को बैठे थे, ऐसा मालूम नहीं चेत है, कोई कुछ बोल नहीं रहे, किंतु इसमें से जो कोयल है जो कुहू कुहू करता है, मयूर के का राधा और कृष्ण के अवतार रखते हैं, कृष्ण को देख करके मयूर आनंद से नृत्य कर उठते हैं। ऐसे ये नृत्य करने वाले और कीर्तन करने वाले ये सब पक्षी लोग परम भगवत ये पक्षी साधारण नहीं। ऐसा ही हमारा जन्म हो जाता जो कृष्ण के निकट से कृष्ण की ऐसी सेवाओं को कर सकता। अरे जमुना का देखो जिनकी धारा स्पष्ट हो गई कृष्ण का रूप और ये वेणु का आगे न बढ़ पाती है और ऊपर से जो पानी आता है फौन पड़ जाता है उसमें कमल के फूलों को उठा करके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रही हैं। कैसे अपने बाहों से बांह क्या है उनकी लहरियां ही बांह क्या करती हैं। पहले तो वो कृष्ण को अपने पानी से आलिंगन से अबद्ध कर लेना चाहती है। पानी इतना बढ़ जाता है जब किसी आगे नहीं सरक पाता पानी बढ़ जाता है, तो कृष्ण को यहां तक पानी आ जाता है। इसका मतलब जो जमुना जी उसी बहाने से आलिंगन कर रही है, किंतु कृष्ण निश्चेष भाव से जब खड़े रहते हैं उस समय में वो लज्जित हो जाती है, लज्जित होकर के नीचे उतर करके उनके चरणों में पुष्पों को लेकर के उपहार। और जमुना जी गुना ही आकाश में देखो, बादलों को देखो, जहां कृष्ण जाते हैं अपनी छाया से छाया से उनको रक्षा करके और सुंदर सुंदर कुसुम जैसे बुंदों को शीतल एकदम करके कृष्ण को और उनकी सखाओं को गाय को सुशीतल बना देते हैं और हमारा सौभाग्य दाता मेघ बनकर इस प्रकार से विभिन्न रूपों में दिन दिन भर रात भर उन्हीं की चर्चा करते हैं। इसलिए भक्तों को कृष्ण की ऐसी प्रकार से चर्चा करते हैं। इसका फल क्या हुआ, पूर्णिमासी के दिन अभी प्रसंग आएगा, पूर्णिमा का दिन आकाश लाल पकड़ रहा पूरब दिशा, सूर्य की लाल लाल किरणें मानो पूर्व दिशा रूप अपनी प्रियतमा के अंगों में गुलाल कर रहा। कृष्ण को स्मृति हुई और उन्होंने बंसी बजाई, क्या बंसी बजाई, कलम बाम जगम फलो बाम दिशा मनोहर, गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने वरदान दिया था कत्यानी के रूप में, कत्यानी की उपासना के पश्चात जो अगले मास क्या कौन से ऋतु में शरद ऋतु में तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करना, ऐसे शरद चंद्र के पूर्ण के दिन में कलम जगौ कलम बाम दिशा मनोहर, ये वेद का मंत्र है, गोपाल मंत्र राज है, उसको बजाया क्लीन। कैसे बताया, क और ल और उसके साथ में ब्राह्म सीखा अर्थात दीर्घ मनोहर माने चंद्र मनोहर चंद्र इससे युक्त हो गया क्लिंग इसको बताया मैंने ये कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है गोप गोपियों से परिवर्तित होकर के विलास परायण कृष्ण का यह स्वरूप है गोपाल क्लिंग इसको बजाया गोपियां जो जहां थी वहीं से सुनी माताएं सोई रही सखा लोग सोए रहे पशु पक्षी भी वैसे ही गए केवल गोपी भाव वाले जीती थी गोपियां उन गोपियों ने भी जो नित्य शिक्षा गोपियों के साथ में जो नित्य शिक्षा गोपियां उनके साथ में रहने वाली समस्त प्रकार के विकारों से रहित होने वाली पूर्ण प्रेम को प्राप्त करने वाली ये गोपियां ही उनको और आजगमो अन्यो अन्यम अलक्षित हो जमा बंसी की ध्वनि उनके कान में पहुंच करके उनके चित्त को वहां से निकाल दिया चोरी करके भागा गोपियों देखा कि हमारा ये संपत्ति मन ही को जो चुरा करते हैं ये भाग रही है बस पीछे पकड़ने के लिए दौड़ी उनके कपड़े लपड़े धरे रह गए आभूषण कैसा का पैसा पंद्रह एक आंख में अंजन है बस उसी को कर करके भगी कोई अपने गले का हाथ पैरों में पहन लिया कमर की करधनी गले में पहन कोई रसोई पका रहे थी बस वही छोड़ दिया तवे पर रोटी रखी थी वो ही मत जल रही भगी को कोई कपड़े अभी पहन रही थी अभी अंचल नीचे गिरा पाता अंचल सरकता गया भगी जो जिस स्थिति में था बेहोश था करके उसके पीछे से कहां गई जहां पर गई ध्वनि जहां से निकल रही थी वहां पर समाप्त कैसे पहुंची जबलोल कुंडला ऐसे दौड़ी कानों में कुंडल तलक रहे हैं अद्भुत इनकी शोभा और ऐसे चली जहां पर एक दूसरे को कोई देख नहीं रही अकेले ही जा रही किसी से ने बताया ऐसे वहां पर भगी और वहां पर क्या हुआ कृष्ण ने कैसे उनको ठगना चाहा और कृष्ण कैसे उनके द्वारा ठग गए और कैसे रात की जा रहा हुई उसमें गोपियों की क्या भावना रहे अफल का विषय अफल आज यही तक बंधा
यं प्रपजन्तं ते समवेदवृत्यं द्वैपायनो विरहकार्यराजुहा कुतेऽपि सन्मतया सर्वाभिनेतु सं सर्वभूतैर्यं मुनिमानतोऽस्मि अभी राष्ट्रपति का अध्याय समाप्त हुई राष्ट्रपति का अध्याय
रासलीला के बाद कृष्ण मथुरा में चले आए अपूर्ण ने मथुरा में लाया इसके बाद में कृष्णचंद्र जी और बलदेव जी दोनों मथुरा में रहते थे उनका मन नहीं लगता था वहां के वसुदेव जी ने उग्रसेन ने अपूर्व ने सब लोगों ने मिल करके कहा कि ये जब तक इसका संस्कार नहीं बदला जाएगा तब तक ये ब्रज में फिर लौट सकता है इसलिए यज्ञोपवीत भी इसको करा दिया जाए सब लोगों ने बहुत जल्दी से कल ही हो अधिक विलंब न हो और इसके बाद में इसको कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए बहुत दूर भेज दिया जाए और यज्ञोपवीत कराने से इसमें संस्कार हो जाएगा कि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है तो जिस दिन उनका यज्ञ पवित्र हो रहा था मुंडन, उस दिन उनका मुंडन हुआ राम और कृष्ण दोनों का। गर्गाचार्य इत्यादि यज्ञ पवित्र देने के लिए बैठे, श्याम और गौर की बड़ी सुंदर जोड़ी चोटी रख दिया गया, पीले वस्त्र उनको दे दिए गए, खड़ाऊ इत्यादि उनको दिए गए। और जब यज्ञ पवित्र संपन्न हुआ, हवन इत्यादि हो गया, गुरु जी ने कहा जे जाओ भिक्षा मांग करके लाओ कम से कम 5 गृहों से। कृष्ण बलदेव जी भिक्षा के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, गुरु जी ने उनके कंधे में झोली लगा दी पीतांबर की। सबसे पहले माता के यहाँ भिक्षा मांगनी होती है यज्ञ पवित्र होने पर। कृष्ण मैया को ढूंढ रहे हैं, मेरी मैया ने कहा था जब तुम्हारा उपनयन होगा मैं तुम्हारी झोली को सोने से मैं भर दूंगी, सोने और जवाहरात इत्यादि से भर दूंगी। मेरी मैया कहाँ है, ढूंढ रहे तो ये मैया नहीं मिल रही। देख लीजिए सामने भिक्षा को पात्र देने के लिए और वहां पर तैयार बैठी है जो हमारे पास में मैया कह करके आएगा देगा, किंतु कृष्ण उनके पास में नहीं जा रहे। वो मैया की चिंता करते हुए एकदम मैया ने कहा था, और चिंता करते करते आकाश की तरफ में देखते देखते बस विस्तृत होकर के मैयारी कह करके और गिर पड़े। सब लोग शोक में विवल हो गए। देखिए सोच रही है कि मैं इसके सामने हूं, मेरा ये बेटा और हमको मैया नहीं मान करके यशोदा को ही मैया मानता है। फिर उसको किसी प्रकार से होश लाया गया, किसी प्रकार से वो उत्सव संपन्न हुआ। और दूसरे दिन वो सुदामा जी जहां पर कि मध्य प्रदेश में संदीपनी की यहां उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां की बातें भी संक्षेप में सुनाई होगी। तत्पश्चात वो मथुरा में लौटे, करीब 2-3 महीने उसमें लग गए। तत्पश्चात किस प्रकार से यमुना देवी के किनारे अपने राजभवन के अट्टालिका पर वो खड़े थे और उद्धव जी से कैसे भेंट हुई, और उद्धव जी को उन्होंने समझाया हमारे माता पिता को सांत्वना देने के लिए ब्रज में जाओ। मैंने गोपियां हमारे प्रति इतनी अनुरक्त हैं, जगत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मामेव प्रेष्टम, मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूं, मेरे अतिरिक्त और दूसरा कौन है। वो केवल हमसे मिलने के लिए ही प्राणों को धारण कर रखी है। क्या होता है दीदी, वो केवल हमारे लिए ही जीवित हैं। मैंने कहा था कि मैं कल नहीं तो परसों आऊंगा, मैं नहीं जा सका, बड़े अधीर हो रहे हैं, तुम जाओ उनको सांत्वना दे आओ। उन्होंने अपने गले की वैजयंती माला उतार करके कृष्ण उनको दी, अपना दुपट्टा उतार करके दे, अपने परिधान के वस्त्र भी उनको पहना दिए, और भोजराज का कंस का वह रथ सोने का उस पर उनको चढ़ा दिया और भेज दिया। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं मैं कृष्ण को छोड़कर के एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूंगा। कृष्ण ने उनके मन की बात भांप ली और कहा उद्धव मैं मथुरा में मैं नहीं हूं, मथुरा में मैं आंशिक रूप में हूं, मैं तो संपूर्ण रूप से ब्रज में गोपियों के साथ नहीं, गोपों के साथ नहीं हूं। तुम वहां जाएगा तो हमको भूल जाएगा, जब मुझे वहां पर देखेगा संपूर्ण रूप से वर्तमान समय तुम भूल जाएगा, और तुम वहां से लौटेगा या नहीं हमको संदेह हो रहा है। उद्धव जी ब्रज में गए, उन्होंने पहले तो देखा कृष्ण के समय में जैसे क्या हो जाता है, मेरे उस समय उद्धव जी ने प्रकट ब्रज में जैसे कृष्ण वृंदावन में थे उस समय का दृश्य उनको सामने में आया। उन्होंने देखा बड़ी बड़ी थान वाली गायें अपने बछड़ों के साथ में चल रही हैं, थन के भार से वे चल नहीं पाती, बड़े बड़े सांड परस्पर लड़ रहे हैं, सुंदर सुंदर बछड़े फूदा कर रहे हैं, गोप गोपियां कृष्ण के संबंधी कीर्तनों में मस्त हैं, रात के समय सुंदर मणि के प्रदीप जल रहे हैं, सुंदर सुगंधित हवा बह रही है, सभी प्रसन्न लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में यह दृश्य अंतर्हित हो गया और उन्होंने प्रकट ब्रज में जब कृष्ण मथुरा में चले आए वृंदावन को छोड़कर वह दृश्य देखा, बड़े विह्वल हो गए, नंद के द्वार पर पहुंचे, शाम हो गई थी, जानबूझकर के अंधकार के समय में आए, नंद बाबा को पता लगा, वो आए और उद्धव को स्वागत करते हुए और भीतर ले गए। उन्होंने उनको कुछ खिलाया पिलाया, था तो कुछ नहीं, क्यों नहीं था, कृष्ण जब चले गए रसोई किसके लिए बने, घर लिपे पुते नहीं, चूल्हा भी टूट चका, उसमें मकड़ों ने जाल बुन दिया, बर्तन मजे नहीं, यशोदा जी फिर उठी ही नहीं। यशोदा जी की तो ये स्थिति थी, एक दिन दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप में श्याम संबंधी श्याम की छोटी सी मुरलिया, उनके झिंगुलिया, मोर मुकुट और उनके खिलौने एक जगह पोटली में बांधी और जाने के लिए तैयार हो गई। एक सखी ने कहा, कहाँ जा रही है मैया, मैं वहीं पर जाऊंगी जहां पर मेरा कन्हैया है। तुम्हारा कन्हैया यहाँ पर खड़े बैठे, वो तो बहुत दूर दूर कहाँ नंदगांव में है, मथुरा में है, नंदगांव की ये बात, हाँ मैं वहीं जाऊंगी, इसलिए जाएगी, हम वहां पर जाएंगे और जाकर के देवकी रानी से मिलूंगी और कहूंगी यह पुत्र तुम्हारा ही है, मैं सवेरे रोज इसका दर्शन कर लिया करूंगी, तुम्हारे घर में झूठे बर्तनों को मांज दूंगी, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, भीख मांग करके कहीं से खा लूंगी, तुमको किसी प्रकार से तंग नहीं करूंगी, बस सवेरे आकर के अपने तुम्हारे पुत्र का जरा मुख देख लूंगी बस। और ये कहते कहते ही वो फिर पछाड़ खा करके गिर गई। यशोदा का जीवन इस प्रकार से चल रहा है, नंद बाबा किसी से मुख नहीं दिखलाते, गोपियां कहती हैं तूने कृष्ण को आभूषण पर और वस्त्रों पर मथुरा में बेच करके तू आ गया, तू कैसे आ गया, इसलिए डर के मारे लज्जा से वो घर से नहीं निकलते। और उद्धव उनको समझाने के लिए जा रहे, उद्धव को कुछ अभिमान था, जी मैं बहुत तत्व ज्ञानी हूं, तत्व ज्ञान को दे करके और उन लोगों को संतुष्ट कर दूंगा, बहुतों को समझा चुके हैं वो, आज इनको भी जरा समझाऊं। ब्रज में पहुंचे, जिस समय पहुंचे उस समय में नंद बाबा ने उनको आदर करके सोच रहे हैं उद्धव जी इनको कैसे समझाऊं। नंद बाबा जी अपने आप कहने लगे, ओहो मेरा कन्हैया कैसा, किंतु उच्चारण नहीं कर सके, जब ही मन में ये पूछने का प्रश्न आया तो ही भाव विफल हो गए, आंखों में आंसू छा गए, गला रुद्ध हो गया, जो जो कुछ कृष्ण का नाम उच्चारण करने जाते हैं याद आती है, कुछ कह ही नहीं पाते। थोड़ी देर में अपने को संभाल करके उनसे पूछते हैं, हमारा भैया वसुदेव तो ठीक है, बड़े सौभाग्य से कंस अपने कर्मों से मारा गया, यह नहीं कहा जे कृष्ण ने मारा, अपने कर्मों से ही, बुरे कर्मों के कारण ही वो मारा गया, अब वो कुशल से है। इतना कहने के बाद ही यही ये पूछते हैं, कृष्ण और बलदेव तो कुशल से हैं, और पूछते हैं उनका गला रुष्ट हो गया और फिर रोने लगे। उद्धव मैं इसको भूलने की बहुत चेष्टा करता हूँ। भूलने की चेष्टा के लिए जाता हूँ यमुना के किनारे, वहाँ के पेड़ पौधे घाट बोलते हैं कन्हैया कहाँ है कन्हैया, उसके पैरों के छाप बोलते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे सभी कृष्ण कृष्णमय हो रहते हैं, उनकी स्मृति आती है, मैं वहाँ रह नहीं पाता। वहाँ से गिरिराज जी में चला जाता हूँ अपने मन को बदलने के लिए, और वहाँ पर कृष्ण के जितनी चिन्ह हैं मानसी गंगा से लेकर के कुसुम सरोवर इत्यादि, वो सब समय उसका स्मरण कराते हैं। उस समय मैं रह नहीं पाता। मैं कहीं भी ब्रज में जाता हूँ ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहाँ पर कृष्ण खेला कूदा नहीं हो, उसकी स्मृति वहाँ पर जड़ित न हो, इसे कहीं मुझको चैन नहीं आता। और ये कह करके डकर डकर करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा ऐसा सौभाग्यवान इस जगत में नहीं है कोई जगत भर में नहीं है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे महापुरुष को मैंने लक्ष्य देखा। उन्होंने नंद बाबा को कहा, ओहो आप और ये मैया यशोदा जी दोनों जगत में सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं। आज परब्रह्म साक्षात समस्त कारणों का कारण, स्वयं आदि, सबका आदि, स्वयं अनादि, समस्त ईश्वरों का ईश्वर या परब्रह्म आपकी गोद में आया है, आपके घर के आंगन में आया है, जिसको यशोदा जी दूध पिलाती है, और उनके प्रति आपका पुत्र का भाव है। इतना सुनते ही नंद बाबा और जोर से रोने लगे। मैं समझता था कि जो कृष्ण के साथ में रह करके तुमको कुछ ज्ञान हुआ होगा, किंतु मैं देखता हूं तुम जैसा का तैसा मूर्ख, तुमको कोई भी ज्ञान नहीं। अरे संसार में मेरे जैसा कोई दुर्भागा व्यक्ति आज तक उत्पन्न हुआ होगा विश्व के सृष्टि से लेकर के अब तक? आज तक आशा महाराज जैसा दुर्भागा कोई नहीं उत्पन्न हुआ होगा। वो परमेश्वर जिसके लिए तुम कहते हो हमारे घर में बच्चे के रूप में आया और मैं उसको प्यार नहीं दे सका, और वो अब देव और वसुदेव के घर में खेल रहा है, मेरा जैसा और कौन दुर्भागा व्यक्ति होगा? अरे राम के पिताजी दशरथ जी पिता थे। राम के वनवास करने के समय ही जो ही घर से निकले तो ही महाराज दशरथ ने क्या कहा, हा राम, और फिर हा कहते हुए ही प्राण प्रत्याग कर दिया। राम भी नहीं निकल सका। यदि पिता है बीच में तो वो है, मैं पिता कृष्ण का पिता कहलाने योग्य नहीं हूं। आज मेरा जैसा कौन दुर्भागा होगा हमको छोड़ करके, क्योंकि मैं मुझ में प्रेम नहीं था, मैं इसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए हमें छोड़ करके जहां उसको प्रेम मिल रहा है वहीं पर गया। इसलिए दुर्भागा मैं हूं और तुम उसको सौभाग्यवान कह रहे हैं। और बड़े जो करके डकर डकर से रोने लगे। बस ये उद्धव जी विचार कर रहे हैं सचमुच, तो मैं इनको समझाने गया किंतु ये तो ठीक कर रहे हैं सचमुच में। मैं ये देखता हूं यदि बीच में कोई सौभाग्यवान है तो यदि वो कौन है, भगवान का नाम लेते हैं जिनके आंखों में आंसू आ जाए, जिनका भगवान का नाम लेते 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 गला रुक जाए, जिनके अंगों से पसीने आ जाए, वो जगत में धन्य है। और इनको देख रहे हैं इनकी कैसी दशा हो रही है, इसलिए शास्त्र सब हमारे कथा का अनुमोदन करते हैं कि नहीं जगत में ये सौभाग्यवान। किंतु जब नंद बाबा की बातों को सुनता हूं तो देखता कि वो परम सत्य कह रहे हैं। हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये विरह में कहां रो रहे हैं तड़प रहे हैं और मैं इनको कह रहा हूं सौभाग्य की, ये तो बहुत मैंने गलती की, तो मुझे क्या कहना चाहिए? उनके हृदय में ऐसा कोई शब्द नहीं मिल पड़ा जो आगे कह सके। इस तरह से रात भर बातें होती रही। शुभानंद जी ने आप लोगों को बतलाया होगा सारी रात इसी में बीत गई। और यशोदा मैया जी डकर डकर के आंख बंद किए हुए इनकी बातों को कहीं सुन रही हैं या कहीं पर मूर्छित हो जाती हैं, सुन नहीं पाती। इसलिए उद्धव जी को मैया से बातचीत करने का कोई भी प्रसंग नहीं आया। सवेरे होते ही वो स्नान करने के लिए कृष्ण कुंड में गए। कृष्ण कुंड कहाँ है? ऊपर से जब उतरेंगे जहाँ पर आजकल बसें खड़ी होती हैं, उसी के पास में एक सरोवर है, उसको कृष्ण कुंड कहते हैं। और उसी से थोड़ा आगे और बरसाना की तरफ में जाने पर उद्धव क्यारी है, जहाँ पर कि उद्धव से गोपियों का भेद हुआ। वहाँ पर गए, वहीं पर स्नान किया, स्नान करके तिलक इत्यादि करके जब ही निकल करके आ रहे थे, इतने में देखा बाएं तरफ में सुंदर सघन कदम्ब की क्यारी है, फूल खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध बवा हवा धीरे 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 प्रवाहित। बहुत घना वो वन प्रदेश है, उसी में उन्होंने कुछ गोपियों को देखा। गोपियां इस प्रकार से बातें कर रही, ये कौन है? अष्ट सखियों के अतिरिक्त, राधा जी के अतिरिक्त अष्ट सखियां उनकी सेविकाएं हैं, हो सकता है कि वो रूप मंजरी, रति मंजरी, लव मंजरी इत्यादि, रूप मंजरी इत्यादि कर रही हैं। ओहो, ये कौन आ रहा है? कोई कहे तुम नहीं समझ पाती, अरे ये श्याम का कोई दूत होगा, तो तू कहने कैसे पहचान गई? अरे ये इसलिए, देखने में श्याम ही जैसा है किंतु श्याम नहीं है, वैसा ही रूप, ऐसा ही स्वभाव, वैसा ही चलन, वैसे ही कपड़े, ये सब इसके हैं, इसलिए श्याम तो है ये, किंतु वो श्याम नहीं। फिर ये कौन है? देखो हमारी नाकें कहीं भूल नहीं कर सकती, कृष्ण के अंगों में जो गंध है उसको आज तक इन्होंने संरक्षित रखा है, मरना वो पहचान जाती है। इसके फूलों से जो गंध आ रही है, इसके कपड़ों से जो गंध आ रही है, इसे ये प्रतीत हो रहा है ये कपड़े कृष्ण जैसे नहीं कृष्ण के ही हैं, ये माला भी कृष्ण की ही है, इसको उसने दिया है। किंतु क्यों आया ये? आया क्यों? और भी सोने के रथ में चढ़ करके आया, सोने के रथ में इसलिए चढ़ करके आया ये कृष्ण ने इसको बैठाया होगा, वो इसलिए बैठाया है सोने के रथ में, या मैया को दिखलाने के लिए, मैया मैं तो वहां पर चरवाहे का लड़का था, गांवों को चराने का काम करता था, और यहां मैं क्या हो गया? मथुरापुरी का नरेश हो गया, अब मेरे पास में सोने के खजाने हैं और ये सोने का रथ है, देखो हमारा सेवक एक सोने के रथ पर चढ़ करके जा रहा है, तो मैं कैसा हूंगा, ये समझो। इस चीज को दिखलाने के लिए कृष्ण ने शायद दिखा, इसे और बड़ी क्या संतना की बात हो सकती है? गरीब दुखी का भिखारी का लड़का सहनशाह हो जाए तो इसे बढ़कर के कौन सी बात होगी? इसलिए यह दिखलाने के लिए मानो ऐसा उसने किया है। उद्धव जी ने कहा, यह सत्य कहती हूं, हमको इस रूप में नहीं आना चाहिए था, हमको तो पैदा लाना चाहिए था, बिना जूते का और छाते का आना चाहिए था, इसलिए यदि पृथ्वी फट जाती तो मैं उसमें अंतर्हित हो जाता, लज्जा से मुख दिखाने वाला नहीं मैं अब, इस तरह से करने लगे। इधर गोपी कहती है, ये देखो ये आया क्यों? आया इसलिए अभी अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति आया था, इसी सोने के रथ पर चढ़ाकर कृष्ण बलदेव को यहां से हरण करके ले गया, अब ये आया है इसीलिए कि कंस मारा गया, अब उसका पिंड दान 12वें दिन में तिथि पर उसको देना है पिंड दान, सब वहां पर बैठे हुए होंगे ब्राह्मण लोग उसका पिंड दान कराने के, जादू ने सोचा होगा कि यहां पिंड उचित नहीं है, वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ, नंदगांव में जाओ, वहां पर कृष्ण के विरह में सारी गोपियां और सारे गोप मरे हुए मिलेंगे और उनका कलेजा निकाल करके लाना, उस कलेजे का ही पिंड दान, इसीलिए शायद सुन करके उद्धव जी और भी बड़े दुखी हो गए, है मैं इसलिए आया। इतने में उद्धव जी को लेकर के ये गोपियां, उनको प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम करके गोपियों ने इनको इशारे से थोड़ा और सघन वन में भीतर ले गई, यहां पर मैं आप सब लोगों को परिक्रमा के समय में कार्तिक महीने में सघन वृक्षावलियों के भीतर में जहां पर कि रास मंच बना हुआ है उसी के निकट पानी का एक छोटा सा सरोवर भी है, यहाँ पर ले जाता हूँ, वहीं पर वो पहुंचे। देखा कदम्ब वृक्ष के नीचे फूलों की सेज लगी है, कमल के फूलों, और सारे अंगों में चंदन, मलय चंदन लेपा गया। फूल सूख करके चूर चूर हो रहे हैं राधा जी के अंगों के ताप से, विरह ताप से, और चंदन भी जो अंगों में लगाया गया वो भी चूर चूर हो रहा है। एक क्षीण सी पुतली, सोने की पुतली वहीं पर सोई हुई है। मंद मंद श्वास चल रहे हैं, श्वास है या नहीं ललिता जी एक रुई लेकर के और देख रही है, श्वास चल रहा है, छीण छीण श्वास चल रहा है। उसी समय उद्धव गए, और उसी समय कृष्ण राधा जी की यह विरह दशा देखने के लिए स्वयं एक भौरे का रूप बनाया और वहां पर उपस्थित हो गए। एक तरफ में उद्धव जी बैठे हुए हैं बहुत दूर से, राधा जी उनको नहीं देख रही, उद्धव बड़ी दूर से देख रहे हैं, बल्कि किसी कुंज की ओर से देख रहे हैं, और राधा जी इनको नहीं देख करके